जरा सा मक्खन मुंह में डाल तो सकी, पर ये क्षण भर में ही इनको अब सहन नहीं हो सका उस गोपी का वियोग। वो चाह रही है ना, तो हाथ छुड़ाकर भाग गए, भाग गए। यशोदा रानी को बड़ा मन में आश्चर्य, उसने आज पहली बार देखा कि ये सांवरा इतना व्यग्र क्यों हो रहा है बाहर जाने के लिए। तो आज उसकी व्यग्रता थी गोपी के मन की व्यग्रता। गोपी के व्यग्र मन ने भगवान के मन को व्यग्र कर दिया। जब ये भागे तो दाऊ जी पीछे भागे और सब बच्चे बच्चे पीछे भागे, पर इनका भागना आज ऐसा था कि कोई इनको पा नहीं सका, सब पीछे रह गए। और कोई कोई तो रास्ते ही भूल गए, दूसरे मार्ग में जा निकले। दाऊ जी भागे दूसरे मार्ग में, वो इनको नहीं पा सके। अब ये मानो जानते ही हूं घर उसका, सीधे अकेले उसके घर में जाते। ग्वालिन ने द्वार किए, वो तो देख रही थी, बाबू देखा रही, ये तो खड़े हैं, ये तो आ गए। ओह, उस रूप को देख करके ग्वालिन के प्राणों में मानो स्पंदन होने लगा। अब वो उसने सोचा कि अब क्या करें, कहीं ये मुझको देख करके लौट न जाए। तो हरि आवत गोपी जब देखो आपन रही छपाई, भगवान को आते देखा तो ये जा करके मणिखंड के पीछे छिप गई। भगवान चुपचाप अंदर पहुंचे और मथनी के निकट जाकर शांत भाव से मौन बैठ के देखते हैं, चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखता ना। तो सूने सदन मथनिया के ढिग बैठ रहे अरगाई, सूना भवन था, कोई घर में था नहीं, बस वो मथानी के पास ही जाकर के उसके चुप करके ही बैठ गए। अब गोपिका दूर से देख रही है छिप छिप कर सुंदर रूप, जिस रूप का वर्णन सुन चुके हैं अभी आप। तो वो सौंदर्य सागर मानो तरंगित हो उठा। अब वो ग्वालिनी के मन की बात पूरी करने के लिए अब भगवान ने नवनीत हरण लीला शुरू की। यहां पर माखन चोरी का आरंभ यहां से हुआ। ये चोरी है क्या? ये तो मनोरथ के पूरा करने की प्रक्रिया है, गोपी के प्राणों को सुख देने का ये कार्य है, ये चोरी थोड़ी है। तो भगवान ने चंचल नेत्रों से एक बार देखा द्वार की ओर, फिर पात्र की ओर देखा, मक्खन तो लौंदा ऊपर आया हुआ बड़ा सुंदर, देखा कोई नहीं तो हाथ डाला, निकाला और खाने लगे। अब वो एक और आश्चर्य हुआ यहां पर, वो बैठी थी मणिस्तंभ के पास में, ये जब मक्खन खाने लगे तो उसको मणिस्तंभ में एक और देखा मक्खन खाता हुआ। तो वो भी भूल गई और श्री कृष्ण को ये भय हो गया कि दूसरा कोई आ गया है, इसने भी देखा तो कहीं मेरी चोरी को प्रकट न कर दे, वो कह न दे कि ये चोरी कर रहा था मैंने देखा। तो बोले अरे भैया देख देख देख, बताना मत किसी को, तू भी खा मैं भी खाता हूं आधा आधा देख। तो नवीर उठा उठा करके उस प्रतिबिंब के मुंह में डालने लगे, माखन नीचे गिरने लगा। तो सोचने लगे कि ये रूस गया है, ये रूस गया है। तो समझाने लगे कि अरे भैया तू क्यों फेंकता है, रखने फिर गिर गया। तो बोले अच्छी बात है, सारी कमोरी तेरी रही, अब तू आज खा ले मैं कल खाऊंगा, कहीं बात फूट गई तो पकड़ा जाऊंगा। तो नंदन नंदन की ये मुग्ध चेष्टा देख करके वो गोपी जो है वो तो बस प्रेम समुद्र में डूब गई, उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ा और उस रस तरंग में उसके हृदय के धैर्य का बांध टूट गया। बस वो हंस पड़ी, बड़े जोर से हंसी। अब हंसी के रूप में उसके प्रेम समुद्र की तरंगे मानो बाहर उछलने लगी। अब कौन स्तंभ की ओर रहती, باہر نکلی. اب تو انہیں دکھا رہی اس نے تو دیکھ لیا دیکھ لیا تو بڑا سنکوچ ہوا اور بھاگے وہاں سے. یہ بھاگے اب ڈر بڑا بھاری بھاگے وہاں سے. تو اب یہ گوپی بڑی پسند کہ آج نہار ہو گئی نہار ہو گئی. تو گوپی جو ہے اس کو اتنا آنند ہوا وہ پھول ہی نہیں سماتی. تو وہ اب جو ملا وہ باولی ہو گئی. پھولی پھیت گوائلنی من میں ری پوچھت سکھی پرسپر باتیں پایو پیو کچھو کہوں تہری. پلکت روم روم گد گد مخ بانی کہتن آوے ایسو کہاں آئی سو سکھری ہم کو کیوں نہ سناوے. کن نیارا جی ایک ہمارو تم ہم ایک روپ سورداس کہ سکھی گوالنی سن دیکھو روپ انوپ. وہ پھولی پھرنے لگی آنند میں چھک گئی. ہردے میں آنند اس کے سمایا نہیں. تو جیسے کسی دردر کو پرم دردر کو دھن راشی مل جائے اور وہ جیسے اپنے آنند کو ہردے میں چھپا کر رکھ نہ سکے. یہ دشا گوپی کہ اس کے ہردے میں آنند سما نہیں رہا. تو سخیاں ملیں ہستی دیکھیں اس کو کھلتی دیکھیں ایک دم. تو پوچھا ہے کیا ہو گیا کہیں تجھے پڑا جھن مل گیا کیا ہیں؟ پر یہ بولے نہیں. اس کا روم روم کھل رہا گد گد ہو گئی منہ سے بولی نکلی نہیں. تو سخیوں نے کہا پلکت روم روم گد گد مکھ بانی کہتا نہ آوے نہیں بانی آئی. تو سخیاں بولی رہے ایسی بات کیا ہو گئی تو بتاتی یہ نہیں بولتی یہ نہیں اور آنکھیں تیری چھلکی آتی ہیں اور تو آنند کے مارے تو ایک دم باولی ہو گئی. ہم سے کیا چھپاتی ہے؟ ارے ہمارا تمہارا شریر دو ہے بھائی تو جانتی ہے. تمہارا ہمارا جی تو ایک ہی ہے. تم ہم دونوں ایک ہی روپ ہے ہم سے کیا چھپاتی ہے؟ بتا نا کیا مل گیا برا ہم سے چھپانی کون سی بات ہے؟ تن نیارا جی ایک ہمارو ہم تم ایک ہے روپ ایک ہی ہیں. یہ سن کر کے آنسو بہنے لگے اور اتنا سا نکلا منہ سے کہ میں نے آج انوپم روپ دیکھ لیا پھر باغی رک گئی اور پھر پریم کے آنسو بہنے لگے. اب گوپیوں کی بھی یہ دشا ہو گئی. اس کا پریم ان میں سما گیا. سب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہری اوم تتسط. آج ان گوپیوں کو ایسے پریم میں رونے دیجیے. یہ کتھا تو لمبی ہے.
بھگوان کی نیویدیہ گرہن پدھتی جس روپ میں بھکت اپنے بھگوان کو کھلانا چاہتا ہے اسی روپ میں بھگوان کھاتے. پدھتی سویکار کر لیتے ہیں وہ بھکت کی اور اس میں ان کے سچیدانندتو میں کسی پرکار کبھی کوئی بادھا نہیں. تو بھگوان نے پرتھم یہ ماکھن چوری لیلا کی اس گوپی کے من کو رکھنے کے لیے ان کے اس کے من کی پرسنتا کے لیے. جب وہ اتنت پرسن ہو گئی پھولی پھولی پھرنے لگی تب دوسری گوپیوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے انت میں بتایا کہ اس طرح سے میں نے آج انوپم روپ کے درشن کیے اور وہ جو میرے گھر پدھارے تھے اس طرح سے میرے گھر میں آج لے آ کر ماکھن کھا گئے. تو پرتھم کری ہری ماکھن چوری دوارے میں من اچھا کری پورن آپ بھجے برج کھوری. یہ پہلے پہل آج माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई और फिर भगवान वहां से भाग गए। तो ये बात एक गोपी ने दूसरे से कही, दूसरी ने तीसरी से चौथी ने, यूं ये बात फैलने लगी। तो सभी के मन में आया कि किसी प्रकार से भी हमारे सभी के घर आवे। तो एक गोपी दूसरे दिन सुनते ही फिर चली और वो आई नंद बाबा के महल में। लोग जो पीछे आए वो पीछे बैठे, क्यों पीछे आए, पहले क्यों नहीं आए, सबको चीर करके आगे क्यों आए थे, या पहले आना चाहिए या पीछे बैठने चाहिए। तो ये वो गई वहां पर नंद बाबा की, अब वो खोजने गई कि किसी तरह से मैं भी कोई इशारा इशारा कर दूं और मेरे यहां भी आ जाए तो काम बन जाए। तो ये उस समय बगल के उद्यान में, नंद बाबा के घर के बगल में ही बड़ा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे सखाओं के लिए, अब इनकी भी सलाह मशवरा होता रहता, सब सब क्या करना है, क्या लीला करनी है, तो बैठे। घर में थे नहीं तो ये पहुंची और जा करके सीधी दुर्गरानी के पास गई, बोली यशोदाई कहाँ है, मेहरबानी कहाँ है। तो कहा भाई उसको तो बहुत देर हो गई, कहाँ गया पता नहीं, जा के जरा बगीचे में ढूंढ ले और मिल जाए तो कहे ना भैया बुला रहे, मैं जरा काम करती। तो ये गई जाकर के देखा तो वहां दो शिष्यों के साथ बैठे, वो हल्ला कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं मजे में। तो बोली श्याम सुंदर लोगों ने बुलाया, अब कौन सुनता, वहां तो खेल में मस्त थे। बोले नहीं नहीं मां से कह दे जानी हमें, अब भगवान के गए नहीं, अब इसकी आंखें लग गई श्री कृष्ण के स्वरूप और फिर सोचने लगी कि राजा ने क्या किया, मेरा घर इतना दूर को मना दिया। अरे समीप होती तो नमारण कितनी बार भाग कर चली आती, और इतनी दूर घर तो मेरे घर के आएंगे भला, नजदीक नजदीक नहीं बढ़िया माखन मिल जाता तो वहां पर क्यों आएंगे। तो उसके मन में बहुत विचार हुआ कि क्या करें, आंखें रुक गई, प्रेम का आवेश आ गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। अब उसने सोचा अब मन में कि ये दशा यदि रही तो किसी क्षण में चेतना जाती रहेगी, होश नहीं रहेगा बिल्कुल, तो ये जो खेल रहे हैं मजे में, किसी को अचेत करी देखेंगे तो इनके खेल में विघ्न हो जाएगा। इसलिए वो मन मारकर बिचारी पूरा साहस धीरज बटोर कर वहां से उठी और चली नंद भवन की ओर। हृदय में बस वही झांकी बसी हुई है, कैसे मेरे घर आए, कब आए। अब ये उसको पता नहीं है कि ये बात ये ऋषि कृष्ण जानते हैं, न यशोदा मैया को पता है, पर श्री कृष्ण को सारा पता है। अब उनकी लीला शक्ति ने, उनकी लीला माधुरी की अभिलाषाएं, मैं उनसे कहा, वो तो सोचने लगे मन में कि भाई इन सारी गोपियों के हृदयों के चित्र तो मेरे सामने आ गए, ये कैसे कैसे क्या क्या चाहती हैं और एक नहीं अगंत हैं तमाम ये बत्सल बात्सल्यमयी वो कांगनाएं हैं और ये कह रही कि देखो हम रोज रोज कितनी लालसा से कितने स्नेह से तुम्हारे लिए मक्खन सजा कर रखती हैं और व्याकुल प्राणों प्राण हमारे तल पर तुमको पुकारते रहते हैं। हमारी ये आंखें प्रतिक्षण तुमको निहारती रहती हैं, चाहती हैं अभी आ जाए और ये देखती हैं कि ये परिकरों के साथ कथाओं के साथ आ जाए तो हम निहाल हो जाए। इसलिए किसी ने हमने सोचा कि भाई बात तो ठीक है पर हम यहाँ आए ही क्यों। ये ब्रज में आने का कारण तो यही है ना, इन प्रेमियों को सुख देना, इनको इस बात पर रस प्रेम रस मरो गदी में डुबो देना, इसीलिए तो हम आए हैं ना। इनके सारे जगत को संसार को छीन कर इनको प्रेम रसमय बना देना, यही तो हमारे आने का उद्देश्य है। तो ये सोच करके भगवान के वो लाल लाल होठों पर मुस्कान आ गई और ये मन में निश्चय किया, मन में यह विचार कर हरि ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं, बाल रूप जसमत मुह जाने गोकिन मिन सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम से ये मेरे बजले। नंदन नंदन उठ बैठे, सखाओं से बोलो भैया आज एक बात और सोची है, नया खेल सोचा है आज। बताओ तुमने क्या सोचा है, तो नया नया खेल सुनने ही चाहते बताओ। अरे बोलो सोचा ये है माखन खाने का खेल। तो सखाओं ने कहा कि माखन खाने कल गए थे ना वैसे ही क्या। हाँ बोले वैसे ही, अब तक तक तो एक घर गए थे, अब घर घर ये खेल करना। उसने कहा हाँ तो तुम हम तो तैयार है, तुम कहो तो अभी तैयार। तो योजना स्वीकार हो, सबको प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब सब ने योजना बनाई कैसे जाए, कौन कौन आगे से खबर देता रहे, कौन कौन छुप कर जाए, कौन जरा तगड़ा है वो आगे जा कहीं ढिलेरी किसी से हो जाए और फिर कहीं कोई मार वार पड़े तो कौन कैसे भागे। ये और किसी प्रकार से पता न लगे तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ हम सब कर लेंगे, माखन तो रोज दोगे ना हमको, देखो पूरा पूरा मुझे मिलना चाहिए, अकेले अकेले खाजा बोले नहीं सब को पहे देंगे पीछे। करें हरिद्वाल संग विचार, चोरी माखन खाऊ सब मिल करहु बाल बिहार, यह सुनत सब सखा हर खे भली तही सुनाय, हसी परस्पर देत तारी सोह करी नंदराय, कहा तुम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर सुधान, सूर प्रभु मिल ग्वाल बालक करत है अनुमान। सब प्रसन्न हो गए, बोध बालक ताली पीट पीट कर लगे उस कमाल के पेड़ के नीचे नाचने और ब्रजेश्वर नंद बाबा की सोगन खा खा करके। लोग नंद बाबा की सोगन तुम बड़े सयाने, हम सब कहते हैं तुमने ये बुद्धि कहाँ पाई, तुम कैसे ही तुम्हारे मन में बुद्धि होकर आई, तुम बड़े छोटे सुजान हो भाई। हाँ हम सब तैयार। तो योजना बन गई, अब ब्रजेश्वरी जो है वो देने आ गई उद्यान में, नाच हो गई थी आज। तो मैया जब लेने आई तो योजना बन गया, कहीं पहले से योजना खुल जाए तो काम ठीक नहीं। तो मैया की बात मान के घर आ गए, मैया ने फिर तैयार कराया, दूध पिलाया खिलाया उलाया। तो अब इनका तो शरीर से ही सब तय था, जाना, तो सब पहले संकेत स्थान पर इकट्ठे हो गए, सारे कथा सेना वेना सब इकट्ठी सब हो गई, वो दो बदल इकट्ठा हो गया और दो कल गोपिया के मंगल पर गई थी, बस उसी के घर पर ले पहले थे। अब वो उसको तो आस लगी हुई आने नहीं, हमारे यहाँ नहीं आ, इसी आशा में वो उनको स्वरूप सौंदर्य का स्मरण करके तन्मय हो गए और मथ रही थी, दही बिलो रही थी। अब बार बार देखती हुई वो खिड़की के पास बैठी, आज बाहर से दिख जाए आते हुए कहीं वो आए और मैंने न देखा, नहीं उठी और कहीं चले गए डर के मारे कि ये तो बैठी है, तो सारा ही हमारा मनोरथ नष्ट हो जाएगा। तो खिड़की के पास वो मंथन करने बैठी और बाहर वो झांक झांक के देख रहे हैं, और इधर खिड़की खुली तो भगवान बुद्ध आ तो गए थे, तो खिड़की से देखे उठी तो नहीं क्या कर रही है, मंथन मत रही है, मंथन ऊपर आ गया कि नहीं, तो सखा सही पे गए माथन चोरी, देखे उस श्याम दवा से तत्व गए मथ के एक गज भू। अब ये देखे देखने लगे इधर देवताओं ने देखा कि ये नया रंग देखो आज, तो तमाम आकाश पथ में चुपचाप अपनी देवी लीला से प्रसन्न होकर, किसी को दिखे नहीं, और देवता और किन्नर और गंधर्व और विद्याधर ये सब आकर के इकट्ठे हो गए, नवनी धर्म कर गए। कौन आया? कहते हैं कि जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड भरे हैं और जिनके एक एक रोम विवर में असंख्य असंख्य ये ब्रह्मांड जो है ये रजकण की समान उड़ रहे हैं, ये भगवान स्वयं साक्षात सबके अधिपति भगवान, जिनको श्रुतियां जान नहीं सकती वे भगवान आज स्वयं ये ब्रजबाला उनका ब्रजरमणी उनका प्रेम रस पान करने के लिए दही माखन नहीं माखन के रूप में उनके हृदय का प्रेम सुधारस ये पान करने के लिए, उनका ये नैवेद्य ग्रहण करने के लिए कथाओं को लेकर उनके घर पर आ रहे। तो ये क्या कोई चोरी है क्या? जरा सोचिए, इसको कोई चोरी बता रहे तो देखना ये होगा कि उसकी आंखें बिल्कुल जगत में लगी हैं, भगवान की ओर आंख गई नहीं। जो त्रिभुवन का अधीश्वर है प्रत्येक वस्तु जिसकी आ गई है, तो कहेंगे भगवान ही कि चोर तो ये है, हम चोरी चोर हैं, बताएंगे कि इन्होंने मेरे घर को अपना घर मान लिया, ये सारा तो मेरा है, चोर ये मैं थोड़ी चोर। ये लाना जी ने जब मैं मैया से बातचीत होगी तब ये बात आ गई। इस प्रकार के भगवान गए चोरी करने और जब देखा कि मक्खन ऊपर आ गया और उसने भी देखा कि ये सब खड़े, मक्खन आ गया तो उसने वो मंथन बंद कर दिया। अब उसको जीत गया कि मक्खन ऊपर ताजा ताजा आ गया, क्योंकि तो पहले ही आ गया था, पर वो आज वो बड़े तड़के से मथने लगी थी आएंगे, उत्साह है ना, जो अपनी चीज को यूं किसी को देना चाहे उसको चोरी बताओ, तो ये तो मानो मुंह निमंत्रण दे रही थी और भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान आ गए नहीं, छिप के तो खड़े आ रहे नहीं, तो देखा क्या करें। इतने क्या हुआ उस दिन उसके घर की कमोरी को खा ली गया, सब मिल गई थी, ये कमोरी मांगने गई बाहर दूसरी गोटी की। अब तो देखा घर सुना है, इस चोर को सुना घर कहिए ना, तो ये सिद्ध लोग कहा करते हैं महात्मा लोग कि भाई घर को सोना बनाओ और इनको बुलाओ तब वो आएंगे। तुम अपने घर में किसी दूसरे को भी रखोगे, संसार को, भोग को और किसी प्राणी पदार्थ को, तो वे आकर के भी बाहर रह जाएंगे, आएंगे नहीं। तो हृदय रूपी घर को पहले सूना करो, खाली करो और उनको बुलाओ। वे खाली घर में आते हैं, भरे घर में नहीं आते। तो ये गई कमोरी मांगने बाहर, इनका अहंकार बाहर गया, अहंकार निकल गया, तो बस भगवान को अवसर मिल गया। तुरंत ये सखाओं को लेकर के सदल बल घर में आ घुसे और जितनी देर इनका काम है उतनी देर वो कैसे आती, योग माया का काम है ना। वो कमोरी मांगने गई और इधर इनका काम बनने लगा। इन्होंने बस मछली में जितना भी मक्खन था सारा का सारा भोग लगा, और भोग लगा करके जब खा चुके तब ये बाहर निकले। हेरी मथानी घड़ी माच से माखन हो उतरात, आपन गई कमोरी मांगन हरि पाई यहाँ घाट। सखन सहित सुहर सुने दधि माखन सब खाए, सूची छाज मटुकिया दधि की हंस तो बाहर आए। सारा मक्खन खा लिया, मटकिया बिल्कुल रीची कर दी, बिल्कुल खाली, और खाली करके बाहर निकल गए। अब ये थोड़ी देर में वो कमोरी लेकर के आई तो उसने देखा कि बाहर निकले जा रहे हैं सब, और सब ये भाई कहते हैं ना सरदार आगे नहीं जा, ये सब निकल जाओ, पीछे हम रहते हैं। तो ये पीछे पीछे सबके आगे आगे सबको निकाल दिया, और ये लग रहा मक्खन अरुण अधरों पर भगवान के। देखा उसने निहाल हो गई, आई गई कर लिए कमोरी घर पे निकसे ग्वाल, माखन कर जब मुख लपटानो देख रही न बला। अब उस गोपांगना के मनोरथ पूर्ति के आनंद का क्या ठिकाना। अब वो भूल गई ये क्या हो रहा, सपना देख रही हूँ कि सच्ची बात है। अब मैंने बुलाया था, मैंने मक्खन ये निकाल के रखा था इनको खिलाने के लिए, ये सब बात स्मृति पट से उतर गई, सारे ये भाव उसके विलुप्त हो गए। इतना ही उनको उसको पता है कि श्याम सुंदर मेरे घर पर बाहर खड़े हैं। तो जोड़ी गई वहां पर, दूर से ही पूछने लगी, कह आए ब्रज बालक संगले माखन मुख लपटाने। ये पता नहीं कि अपने घर में ये हुआ है। बोली श्याम सुंदर, अरे आप बच्चों को साथ लेकर के कहाँ आ गए, और ये तुम्हारे मुंह पर माखन जो लिपट रहा है ये कहाँ लपेट के ले आए। श्याम सुंदर कुछ कहने लगे उत्तर में, उन्होंने क्या कहा सो उनकी समझ में नहीं आया, गोपी की समझ में, ये तो अपना भाव विलुप्त रही, और वो जरा सा मुस्कुरा दिए। अब महाराज उनका मुस्कुराना था कि ये बिचारी और भी भावावेश में निमग्न हो गई। इतने में श्याम सुंदर ने अपने एक सखा का हाथ पकड़ा और चल दिए वहां से, वो ठगी सी रह गई। बुझ गई नहीं वो कान एक बालक निकसे ब्रज की खो, सूरदास ठग रही ग्वालनी मर मन हर लियो जो। बस ये भगवान मन मन हरण करके केवल मक्खन नहीं चित्त चुरा करके यदि भाग गए, वो स्वर्ण पुतली सी वहीं पर खड़ी रह गई। जिधर श्याम सुंदर गए उधर उसकी आंखें लग गई, खड़ी रही घंटों तक, दोपहर हो गया, तब होश आया, तब भीतर गई, जाके देखा तो मटकी रीति, उसमें मक्खन वक्खन कोई सामान नहीं, रीति मटकी को देख करके तब भी होश नहीं। सोचा कि मैं ये मक्खन वाला बर्तन कहीं और रख आई मालूम होता, ध्यान थी, सोचा मक्खन निकाल करके मैं बर्तन में रखा तो था पर अब रखा ही नहीं था, मैं कहीं उसको रखी आई और वो दिखाई नहीं दे रहा। इतने में फिर देखा इधर, अरे तो ये तो सारे ही मटके और बासन सारे उल्टे पुलटे पड़े हैं, वो काशी के और सोने के और चांदी के और मिट्टी के सब छिन्न भिन्न पड़े हैं, कोई टूट गया और कोई उल्टा पड़ा है। अब उसके मन में आया कि वाह वाह, ये तो सारा श्याम सुंदर का काम है। अब चित्त उसमें लग गया, देखे जाय मटकी आ रही थी, न राखो कहूं हेरी, चकित भई ग्वालिन मन अपने, ढूंढत घर फिर थे, देखत पुनि पुनि घर के बासन, मन हर लियो गोपाल, सूरदास रस भरी ग्वालिनी, जाने हरि को ख्याल। मटकिया रीति देखी, देखा कहीं मक्खन रखा होगा, ढूंढा तो ढूंढते ढूंढते सारे बासन बर्तन उसको उल्टे पुलटे मिले। चित कर लिया था श्री गोविंद ने, रस भरी ग्वालिनी छगी से रह गई और ये समझ गई कि ये श्याम सुंदर का खेल। अब तो ये बात घर घर फैल गई, अब नित्य नया खेल चलने लगा, ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, गधि माखन चोरी करी ले हरी, ग्वाल सखा सनखा, ब्रज बनिता ये सुन मन हरख, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भर यू रही छुपावे, मन ही मन अभिलाख करत सब, हृदय धरती ये ध्यान, सूरदास प्रभु को घर मिले, देहु माखन खान। चली ब्रज भरन घर ने यह बात, नंद सुत संग सखा लेने, चोरी माखन खात, तू कहती मेरे भवन भीतर अभी पैसे भाई, तू कहती मुन देख द्वारे, उतनी गए पराए, तू कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देव वाचो खाई पनो श्याम, तू कहती मैं देख पानू भरी धरो अखबार, तू कहती मैं बाल राखू को सके निर्वार, सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोड़ कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। गोपियां रात रात भर जाग कर बात देखा करती, उनका मन निरंतर श्याम सुंदर में लगा रहता, प्रातः काल वो जल्दी जल्दी उठकर दही बिलो के रखती, कहीं प्राण धना के लौट न जाए, नहीं आता आते आज क्यों नहीं आए, प्रतीक्षा करती क्षण क्षण में देर हो रही, आए नहीं आए नहीं। इस प्रकार प्रत्येक गोपी का मन श्री श्याम सुंदर का धाम बन गया। तो ये बात घर घर फैल गई, तो अब ये रोज रोज जाने लगे, आज उसके घर और कल उसके घर, तो सखियां बड़ी प्रसन्न सब आपस में बड़ी राजी सब हो गई कि बस अब क्या, अब तो कई राजी तो हो गई, पर इनके मन में एक चीज लगी रही, जरूर हमारे यहां अब सबके घर तो रोज जा नहीं, ये उनके उत्कंठा जगावे तो दो चार दस के घर तो ना, एक दो घर नहीं, अब तो इनका दिन भर इसी में बीतने लगा, दो घर चार घर दस घर जहां जहां ज्यादा उत्कंठा देखे वहां वहां ये जाने लगे, और सब तरह से ये अब ये अब इनके चर्चा ये जब मिले आपस में, भाई आए थे क्या, बोले हमारे तो आज आए थे, ऐसे आए थे क्या किया था, तो आपस में उनकी बड़ी मधुर चर्चा है, इस पर बहुत गाया है भक्तों ने, तो बोले भाई एक ने कहा गधि मथन निनाद स्तक निद्र प्रभाते निधत पद मगारम बल्लवीनाम प्रविष्ट है, लोक कमल समीर भाषण निर्वाप्य दीपान कवन कनवनी सब पाक दूपाल बाल, ये स्तवन है कवि कर्णपुर का श्री कर्मान ने। वो बोली एक बोली कि बहन सुन, मेरे घर की बात सुनाऊं, कितनी मधुर बात है, सवेरा हो रहा था और मैया गुरुओं ने बैठ ली तो घर घर शब्द से श्याम सुंदर की नींद टूट गई, नींद टूटते हुए माँ से आग बचा कर भागे और मेरे घर आ गए। उस समय मैं दही बिलो रही थी, मैंने देखा कि बड़े धीरे 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 पैर रखते हुए और ये माखन भंडार की ओर जा रहे थे। वहां से दिए जल रहे थे। इन्होंने सोचा कि मैं देख लूंगी, भय हो गया। जब पहला कदम किया गया घर में घुसा, दूसरा दिखा, फिर मैं बताया, दूसरा बताया, तो तीसरा ने उठाया, इसे से फूक मार मार के सब दिए बुता दिए। अब कोई नहीं जीत बड़े, सब जी सकते बुझ गए। इन्होंने देखा कि अंधेरा हो गया, पर बहन क्या बताऊं, इनके श्री अंगों से जो श्याम ज्योति निकल रही थी और ये इनके गहनों का जो प्रकाश था मैं देख रही थी, और ये तो समझते थे कि देख नहीं रही है, और मैं देख देख के निहाल हो रही। ऐसा ये चतुराई से सब दीपे सब दीपकों को बता के हमारे घर में चार ये मिला। दूसरी बोली भी हम हमारी तो सुना, वो बराबर थे क्या बोले, आप बोले मेरे भी आप आए थे, तेरे घर कब आए थे आप, तो बोले कुछ देर हो चुकी थी तो मेरे घर बना दे। तो भाई क्या बताऊं, आज से ऐसा विचित्र जादू हो गया, मैं तो इनके श्याम कलेवर को देख कर द्वार पर आए।
दो दिन तो इन बरसों आज पूरे चले ग्वारी में घर गए, जान सांझ की अंधेरी मंदिर में गए समाए, श्यामल तुम लखन जाए, देह गे रूप सब कहूं को सके निवेरी। जित देखू तित श्याममयी है, सारा का सारा श्याममय हो गया, तो मैं कैसे किसको देखती, अकेले कहीं ये श्याम सुंदर दिखते और उजाला होता तब तो ठीक था, चारों तरफ सब जगह श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर हो गए। तो मैंने क्या किया, ये सोचा कि ऐसे तो नहीं दिखता, कुछ उजियाला करें, तो एक दीवा जलाया और दीपक जला करके मैं अंदर गई तो देखा मक्खन भंडार में आज विराज रहे और विशाल वक्ष स्थल पर वो नवनीत के बिंदु सब झलमला रहे हैं। श्याम सुंदर पर श्वेत है ना ये नवनीत बिंदु, तो बड़ी शोभा। मुझे ऐसा लगा बहन गोरस तन छीट रही शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमीन बिंब उड़गन पथ के, ऐसा मयम दिया मानो कलिंद नंदिनी जमुना जी ने ये तारावलियां सब प्रतिबिंबित हो रही हूं, सब तारे सब जगमगा रहे हूं, ऐसा मालूम दिया उनके वक्षस्थल पर चमकते हुई दधी की बूंदे। तो मैं तो बस नौछावर हो गई, सूर्यदास प्रभु कृपाल डारे तन फेरी, मैं तो बस समर्पित हो गई इस रूप पर, नौछावर हो गई। तीसरी बोले सुन मेरा अनुभव बताऊं मैं तुझे, मैं अपने तो आज गड़बड़ करो या तो पहले से गया करो,
आज पहले से करे था, आज रिक्वा हो रही थी या कीर्तन में बोल रहा था, बिल्कुल ठीक आवाज जा रही थी, कोई दिक्कत वो नहीं थी, तो पता नहीं क्यों हो गया, बिल्कुल ठीक आवाज जा रही है, तार नहीं ये पतन कर सकते हैं,
अब देख है नहीं ठीक, ठीक। तो तीसरी गोपी बोली कि सुनो बहन मेरा अनुभव, तू जानती हो कि मेरे घर के बगल में बगीचा है बड़ा सुंदर, तो मैं बगीचे में, अब श्याम सुंदर आए तो धीरे से, पर उनके जो नूपुर रहे वो जरा बज उठे, मानो उन्होंने बजा दिए हो मुझे चेत कराने के लिए ही, तो मेरे कानों में रुंझुन रुंझुन ध्वनि पड़ी, तो मैं दृष्टि उठाकर देखने लगी, देखा मैंने तो श्याम सुंदर यशोदा नंदन और ये धीरे धीरे सशंकित से डरते हुए से मेरे घर की ओर जा रहे हैं, रह रुक जाते हैं, देखते हैं कोई देखा तो नहीं, चारों देखते हैं। तो मैंने सोचा कहीं देख न ले तो मैं लताओं में छिप गई। छिप गई तो ये द्वार पर पहुंचे, कोई था नहीं तो खुले किवार से तो घुस गई अंदर। ये जब अंदर गए तब मैं भी धीरे से जा करके भीतर और इस ताक में बैठ गई कि मजे में खा रहे हो, जब निकले तब दर्शन करो। तो अंदर जा करके ये आए बाहर, अब इनकी कोमल हथेली पर नगरीत सुशोभित था, हाथ में लौंदा लिए खा तो आए ही, लौंदा हाथ में लिए आए बाहर। अब मैं लपकी तो मेरे हाथ आ गए, मैंने पकड़ लिया हाथ। लेकिन बहन क्या कहूं, मैं पकड़ के कुछ बोलना चाहती थी कि मैं बोल नहीं पाई, स्पर्श होते ही और मेरे अंगों में कंपन हो गया मेरे सारे अंगों में और मेरे और इधर में देखा कि उनके मधुर अधरों पर मुस्कान छा गई। मैं कांपने लगी और वो मुस्कुराने लगे। तो मैंने और हंसकर बोले, अरे क्या क्यों पकड़ा है तेने, देख तू याद कर उस दिन तू आई थी जब मैं मैया की गोद में रहा और तूने प्यार किया था मुझको, कहा था कन्हैया मेरे घर आओगे। तो मैंने कहा अच्छा आऊंगा। तो कहा था तुमने माखन खाओगे, तो मैंने कहा खाऊंगा। अब अपनी बात तो भूल गई जो बुलावा देके आई थी उस दिन, और आज माखन खाने आया तो तूने मुझको पकड़ लिया है। तो बोले उनके ये मधुर कंठ की मधुर आवाज सुन करके, और मैं तो बिल्कुल मोहन मंत्र था वो भूल गई और मेरे प्राण के प्रत्येक तरंग में श्याम सुंदर की मोहनी समा गई, मेरी आंखें मिट गई। तो वो चाहते तो मेरे हथुआ को भाग जाते, पर नहीं, अभी तक वो खड़े हुए थे, हाथ पर हाथ रखे हुए। मैंने आंखें खोली देखा तो हंस रहे थे, पर मैं बोली जरा ठहर जाओ, थोड़ा अंदर से दही माखन ताजा हो गया।